ओम शांति। बाप दादा की पालना में पले हुए, वरदानों में सदैव स्वयं की झोली भरते हुए औरों की झोली भरने वाले, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए सदैव अपना समय श्वास संकल्प आजीवन से सेवा में लगाते हुए निरंतर अखंड अटल महादानी महान विशेष आत्मा नलिनी दीदी जी हम सभी के बीच पधारे हैं। हम दीदी जी का तहे दिल से और प्यार से दीदी जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मात्र 14 वर्ष की अल्प आयु में परमार्थ कारणे साधु धरा शरीर, इस प्रकार से बाप इस महावाक्य को सार्थक करते हुए मानवता के उच्चतम आयामों को छूता हुआ अलौकिक दिव्य जीवन आपने बनाया। हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा के आप तो सदा नैनों में समाये रहते थे। आप सभी को पता है कि दीदी जी का बाबा से बहुत घनिष्ठ प्यार था और दीदी जी का बाबा ने बहुत सुंदर फोटो भी बनवाया था। दीदी जी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, एक्शन सहित दीदी कर रहे हैं, देखिए। और ये बच्चों के मुख्य पृष्ठ पर सदैव ये फोटो रहता था और बाबा ने बहुत प्यार पालना दी। दादियों के अंग संग रह करके भी आपने बहुत सारे अनुभव किए हैं, तो आप अनुभवों की खान हैं। हम क्या आपका परिचय दे, पर कुछ दिल के उद्गार जरूर कहते हैं। छाता बारिश को नहीं रोक सकता, छाता बारिश को नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने वालों का हौसला अवश्य बढ़ा देता है। इसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, परंतु सफलता के लिए प्रयत्न करने की शक्ति जरूर देता। ऐसे बाबा के वरदानों की छत्र छाया में पलने वाले सफलता के सितारे, बाबा बाबा का पाठ हम सबको पढ़ाते, बाप समान बनाने के लिए सहयोग स्नेह और शक्तियां जरूर आपसे हमें मिलती है। दीपक बोलता नहीं उसका प्रकाश परिचय देता, ऐसे महान विभूतियां अपने व्यक्तित्व से ही हमें परिचय देती है। इसीलिए हम सब अब दीदी जी से सुनेंगे अव्यक्त और साकार पालना। अनुभव युक्त क्लास आदरणीय राजयोगिनी नलिनी दीदी जी, ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम जो भी यहाँ पर हमारी बहनें और माताएं बैठी हैं, उन सभी को वंदे मातरम। और जो भी हमारी पांडव सेना के शिव शक्ति भ्राताएं बैठे हैं, उन सभी को भी मेरा वंदे भ्रातरम। ये मैंने नहीं कहा, ये है हमारे निराकार निरहंकारी और निर्विकारी। हम सभी बच्चों के प्यारे बाबा शिव बाबा और जिसके तन में बाबा आए, खास हम बच्चों के लिए, हम संगम युगी ब्राह्मणों के लिए, तो ये ब्रह्मा बाबा ने हम सभी को कहा। शिव बाबा ने, जो कि असाधारण है, और ब्रह्मा बाबा जो कि एक साधारण तन था, तो साधारण मनुष्य तन के माध्यम से असाधारण निराकार शिव पिता ने इस सृष्टि पर आकर के और हम सभी बच्चों को वंदनीय बनाया, पूज्यनीय बनाया और कहा वंदे मातरम। उसमें हमारे सभी बहनें भाई सब आ जाते हैं। तो ऐसे थे मेरे प्यारे साकार ब्रह्मा बाबा और मेरे अति प्यारे निराकार शिव बाबा, जिनको हम ब्राह्मण बच्चे, ब्राह्मण भी कौन से, दुनियावी ब्राह्मण नहीं, जाति के ब्राह्मण नहीं, जो अपने कर्म धर्म और नियमों को भूल चुके हैं, उन ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है पद्मा पदम अति 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 सौभाग्यशाली, जिसको डायरेक्ट भगवान ने डायरेक्ट ब्रह्मा मुख से के दिव्य अलौकिक जन्म दिया और कर्मधारी पवित्र ब्राह्मण बनाया। तो हमारे लिए ये कितनी अलभ्य अवर्णनीय घड़ियां हैं जो संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चों को मिली है, क्योंकि बाबा हर मुरली के अंदर यह बात हम बच्चों को याद दिलाते हैं, ना सिर्फ याद दिलाते लेकिन पक्की कराते हैं और हम बच्चों को अंडरलाइन भी करनी होती है। और दुनिया के सभी शास्त्रों के अंदर, चाहे वो कोई भी धर्म का धर्म पुस्तक हो, उसमें यदि उल्लेखनीय भगवानुवाच महावाक्य है, तो मैं जिस महावाक्य को अति 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 महत्व देती हूं और जिस महावाक्य को सदैव याद करते अपनी स्थिति को स्टेबल रखती हूं, और वो महावाक्य है, मैं खास इस विश्व के अंदर, उसमें भी खास भारत देश के अंदर मैं किसके लिए आया हूं बताइए। बाबा किसके लिए आए? नशे से बोलिए, हम बच्चों के लिए। कौन से बच्चे? बाबा ने शायद आज ही मुरली में कहा कि जो संगम युग पर डायरेक्ट भगवान के, ब्रह्मा के द्वारा डायरेक्ट ब्राह्मण बच्चे बनते हैं संगम युग पर, और वो बच्चे कौन है? हम हैं। कौन है? हम हैं। बाबा मुरलियों के अंदर बार बार ये बात हम बच्चों को रूहानी ऊंचाई के नशे की बताते रहते हैं कि मैं तुम बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूं। द्वापर युग से लेकर के भक्ति मार्ग शुरू हुआ और भक्ति मार्ग के अंदर हम पूज्य जो थे, हमने तो भक्ति की, लेकिन हमारे साथ साथ जो अन्य आत्माएं थी उन्होंने भी भक्ति की, परंतु बाबा ने किसको भक्ति का फल दिया? जिन बच्चों ने आदि से अंत तक इस विश्व स्टेज रूपी रंग मंच पर 84 जन्मों का पार्ट प्ले किया, और वो कौन है बताइए? वो है हम बच्चे। तो बाबा ने हम भक्तों को, कौन से भक्त? जो पूज्य थे और पुजारी बने, जो बाबा ने कहा आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाबा प्रत्येक मुरली के अंदर ये बातें हमसे ऐसे करते हैं जैसे हम अपनी फैमिली के साथ जब बैठते हैं, माता पिता और भाई बहने, तो माता पिता हम बच्चों से बातें करते हैं, क्या आप सभी रोज अपने माता पिता से, जो हमारे रूहानी माता पिता हैं, उनसे बातें करते हो? याद की यात्रा में बैठते हो तब की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन मुरली जब हम चाहे स्मृति में लाते हैं, चाहे पढ़ते हैं, चाहे सुनते हैं, चाहे सुनाते हैं, चाहे लिखते हैं, चाहे उससे हम होमवर्क करते हैं, उस समय हम किससे बातें करते हैं? बाबा किससे बातें करते हैं? बोलो, गिनती करना। हम बच्चे कितनी बार आता है? हम बच्चों से बाबा बातें करते हैं। अब बताओ, क्या हमारे जैसा पद्मा पदम सौभाग्यशाली इस सृष्टि के अंदर कोई होगा? कोई था? और ये सौभाग्य हम बच्चों को वर्षे में प्राप्त हुआ है, और हमारा ये सौभाग्य क्या हमसे कोई छीन सकता है? हमारे इस भाग्य को कोई चुरा सकता है? नहीं ना। तो ऐसे सौभाग्यशाली हम बच्चे, जिनमें से कई बच्चों ने व्यक्त स्वरूप में, प्रत्यक्ष रूप में, साकार रूप में ब्रह्मा बाबा को और ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव पिता को पालना देते हुए, पालना लेते हुए और पालना के भिन्न भिन्न अंदर ही अंदर अनुभव करते हुए कई बच्चों ने देखा और कई बच्चों ने नहीं देखा, माना व्यक्त बाबा साकार बाबा को नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त बाप दादा को, अव्यक्त बाबा को साकार बाबा वाले बच्चे और अव्यक्त पार्ट जब चला तब के बच्चे, सभी बच्चों ने अव्यक्त बाप दादा की पालना ली। साकार में व्यक्त की पालना वो व्यक्त रूप की रही, परंतु उस व्यक्त की पालना को भी जिन्होंने अव्यक्त रूप में महसूस किया, क्योंकि पालना देने वाला व्यक्त स्वरूप में था तो अव्यक्त, तो टोटल पालना अव्यक्त स्वरूप में शिव पिता ने हम अव्यक्त विदेही आत्माओं को दी। अब ये आत्मा और परमपिता परम आत्मा परमात्मा उनके बीच की बात है ये। अब जिन बच्चों ने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के और परमात्मा की पालना ली, उन्होंने अतींद्रिय सुख का अनुभव किया, रूहानी नशे में झूमते रहे, रूहानी नशे में आगे आगे चलते गए, बढ़ते गए और आज तक वे अपने इस ब्राह्मण परिवार के जो भी भाई बहने हैं उनसे स्नेहपूर्ण सहयोगी बनकर उनको पालना दे रहे हैं। अब जब पालना शब्द आता है तो पालना माना क्या? हर एक उसकी अलग अलग परिभाषा देंगे, परंतु मैं आपको कहती हूं कि पालना शब्द को बचपन को साथ में लेकर के याद करो। आया स्मृति में? क्या स्मृति में आया? कि माता पिता जब एक बच्चे के माता पिता बनते हैं, मां बच्चे को जन्म देती है, तो उसको कहां देखती है? या तो अपनी गोदी के पालने में, या फिर जो बना हुआ किसी भी वस्तु पदार्थ का पालना, चाहे लकड़े का हो, कपड़े का हो, लोहे का हो, चांदी का हो, सोने का हो, या हीरे मोती जड़े हुए हो, पालना मिलता है। पहले हमें माता पिता का पालना मिलता है, जिस पालना में हम बच्चे अति खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि तब भी उस पालना को किसका साथ और सहारा मिलता है, या तो माता पिता ऐसे पकड़ के हाथ से उसको पालना में झुलाते, या फिर उसको एक डोरी या रस्सी बांधी हुई होती है, तो डोरी बंधी हुई रहती है पालना के साथ, यानी माता पिता के साथ, या तो हम उसके सहारे उस पालना में झूलते हैं। राइट बता रही हूं? भले हमें शायद वो बातें याद ना भी हो, लेकिन माता पिता की पालना हमें वहां से शुरू हो जाती है। तो वो बचपन के दिन, मुरली में कई बार आता है, बचपन के दिन भुला न देना। तो ये जो हमारे पूरे कल्प के 5000 वर्ष के अंदर 4 युग बीतने के पश्चात, जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का बीच का समय आता है, जो बहुत थोड़ा सा समय है, जिसको हम बच्चों ने, बाबा ने बताया, वैसे कल्याणकारी संगम युग कहते हैं। और उस संगम युग में हम बच्चों को मीठे मीठे बाप दादा पालना देते हैं। तो हम सभी का जन्म कब हुआ? बड़ी आश्चर्यजनक बात है, जब हमारा पिता का अवतरण, उसका जब दिव्य अलौकिक अवतरण का जन्म, तब हमारा भी जन्म अंधियारी रात्रि में, कलयुग के अंत में, तब सतयुग नहीं होता। तो परमपिता परमात्मा की हम शिवरात्रि मनाते, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि शिवरात्रि शिव पिता का तो जन्मदिन है ही, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी, और साथ में तुम संगम युगी सभी बच्चों का भी जन्मदिन है। तो ये सौभाग्य भी किसे प्राप्त हुआ कि बाप का और बच्चों का जन्म एक ही समय पर, और फिर जन्म लेने के पश्चात हमें बाप और दादा साकार निराकार दोनों की पालना मिली, व्यक्त अव्यक्त दोनों की पालना ली, लेकिन मीठे मीठे शिव बाबा ने, भले व्यक्त बाबा अव्यक्त हुए, लेकिन उसने अपनी पालना का कर्तव्य जो व्यक्त साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा किया, वो ही पालना का कर्तव्य अव्यक्त रूप से हम बच्चों का किया और हम बच्चों को पालना दी। और जब हमें वो पालना मिली तो हम काफी बड़े हो चुके थे, हम बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े होते हैं तो पालना छूट जाता है और बच्चे खेलने लगते हैं। तो बचपन याद करो, खेलने जब जाते हैं तो मैं नहीं समझती हूं कि यहां कोई भी ऐसा भाई बहन बैठा होगा जिसने झूला न झूला हो। जो गार्डन में, बगीचों में जो झूले लगते हैं ना लंबे, वो झूला न झूला हो, है कोई ऐसा? कोई नहीं। तो फिर हम झूला झूलना शुरू करते हैं और वो झूला भी हमें माता पिता ही ले चलते हैं, झूले में बिठाते हैं, झूला हमारा झुलाते हैं, हम भी मुस्कुराते हैं और बाबा भी हम बच्चों को देख देख कर हर्षित होते हैं। अव्यक्त बाप दादा की प्रत्येक मुरली को याद करो, साकार बाबा की मुरली और अव्यक्त बाप दादा की मुरली, दोनों की जो शुरुआत है मैं वो शुरुआत आपको बताती हूं। आप लोग फिर से जाकर के साकार बाबा की मुरली और अव्यक्त बाप दादा की मुरली देखना जाकर के। साकार बाबा की मुरली की शुरुआत आपको पहला पैराग्राफ खूब शिव बाबा की ही महिमा, पूरा पैराग्राफ आपको वही पढ़ने को मिलेगा। अब जब अव्यक्त बाप दादा आए तो उनका जो शुरुआत का पैराग्राफ किसकी महिमा, क्योंकि जो मुरब्बी बच्चा, लाडला बच्चा, प्रिय बच्चा, जो उसके समान बना बच्चा रचयिता, उसने बाप की भूरी भूरी प्रशंसा की जब मुरली सुनाई, तो शिव पिता ने आकर के उसका रिटर्न जब अव्यक्त मुरली चलाई और शुरुआत की, तो शुरुआत में अव्यक्त मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों की महिमा शुरू कि बाप दादा देख रहे हैं, किन बच्चों को देख रहे हैं। प्रत्येक मुरली में आप देखेंगे हम बच्चों के अलग अलग टाइटल को लेकर के, और बाबा पहला पैराग्राफ हम बच्चों की महिमा का सुनाते हैं। ये टाइटलों के साथ महिमा करना ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? सिर्फ किसी महान व्यक्ति की महिमा करना कहेंगे या फिर वो व्यक्ति को हम प्यार करते हैं इसीलिए हम इतने टाइटल के साथ उसकी महिमा की शुरुआत करते हैं? हम जब भी किसी को पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय हम पहली लाइन उनको याद करके और क्या लिखेंगे, प्रिय अति प्रिय, मेरे मन के मीत, मेरी जिगर की जान। पहले तो हम सारी महिमा टाइटलों के साथ लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, उसके पश्चात हम अपना स्नेह पूर्ण, जितना जिसको अपना स्नेह प्रकट करना है वो प्रकट करते हुए लिखेंगे कि व्यक्ति का या प्यार स्वीकार करना जी। तो ये संगम युग कितना प्यारा है। हम बच्चे बाप की महिमा करते हैं और बाप दादा हम बच्चों की महिमा करते हैं। हमारा मिलन कितना न्यारा निराला, अतिंद्रिय सुख वाला, हर्षित करने वाला, कितना मन भावन, जितने शब्द कहो वो कम पड़े। तो ये कितना प्यारा मधुर कल्याणकारी हम बच्चों का संगम पर मिलन। तो ये सब क्या है? ये उस परमपिता परमात्मा अव्यक्त शिवपिता और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर के ये जो झूला झूलाते और फिर जो ये पालना देते प्यार दिखाकर, ये पालना का स्वरूप है। हमें उस पालना में पलना है, हमें वो पालना को बार बार स्मृति में लाना है। हम कई बार स्मृति से भटक जाते हैं और हम चश्मा भूल से कुछ अलग पहन लेते हैं और हम याद करने के बजाय फरियाद करने लग जाते हैं और भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न व्यक्तियों की, अपने ही परिवार की, अपनी प्रिय व्यक्तियों की, जो होवनहार देवी देवताएं हैं, होवनहार मंदिरों की इष्ट मूर्तियां हैं, उनकी ही हम फरियाद करने लग जाते हैं कि हमें पालना नहीं मिलती, यथार्थ नहीं मिलती, उचित नहीं मिलती, समर्थ नहीं मिलती। इसलिए स्थिति हमारी अटल अखंड अविनाशी नहीं रहती। इसलिए बाबा कहते हैं फरियाद मत करो, फिर मुझे याद करो। और कैसे याद करो? कितनी फर्स्ट क्लास बात बताते हैं, जो साकार में भी हमें स्मृति में दिलाते थे। हम जब बाबा के सामने आते थे तो बहुत दिल करती थी कि हम बाबा को गले लगें। तो जब हम गले लगते थे तो बाबा कहते थे, किसको मिल रही हो, कौन है? तो किसकी स्मृति दिलाते थे बाबा? उस निराकार पिता परमात्मा की, विदेही बाप की, कि विदेही होकर के, कि विदेही होकर के उसको मिलना है। आत्मिक स्वरूप के साथ मिलना है, इसको कहते हैं मुरली सुनना। मुरली की ये विधि, मुरली की पद्धति, मुरली का मनन, मुरली का चिंतन, मुरली को इतनी गंभीरता के साथ महसूस करते हुए एकांत में अकेले में पढ़ना, ऐसे पढ़ना जहां सिर्फ मैं हूं और तू है। जो दो स्नेही दो प्रेमी होते हैं ना, वो सदैव क्या चाहते हैं, हम जब आपस में मिले बातें करें तो आजू बाजू बीच में कोई ना हो, ताकि हम खुले दिल से अपने दिल की बात उनके आगे रख सकें और उनके दिल की बात हम भी सुन सकें। वो हमारे बिना कहे हमारी बातों के इशारों को कैच करें और हम भी उनके ऐसे इशारों को कैच करें। और वो जो अदृश्य आत्मा का मिलन है वो है पालना। उसमें हम झूला झूलते हैं, कभी प्यार का झूला, बाबा ने कई बार कहा है, कभी प्यार का झूला, कभी सुख का झूला, कभी शांति का झूला। हम जो आनंद लेना चाहें हम उस झूलने में झूलते रहते हैं। समय मेरा पूरा हो रहा है, दिल तो करती है मैं आपको बहुत सारी साकार बाबा की बातें बताऊं पालना की, जो आप गदगद हो जाएंगे सुन करके, उतनी ही गदगदित करने वाली अव्यक्त बाप दादा की पालना। अब सोचो जब अव्यक्त बाप दादा हमारे सामने उपस्थित हैं और मुरली चलने के पश्चात जब हमें लाइन में क्यू में बाबा के आगे से गुजरने को एक अहो सौभाग्य मिलता है, कितनी सेकंड हम बाबा के सामने होते हैं, बिल्कुल सामने, मैं यहां हूं आप यहां, कितने पल मिलते हैं सोचो। अब जिन्होंने समय से ये पल चुरा कर अपना बना लिया, उनके जो मालिक बने, उन्होंने अरे नजर मिलने में कितना टाइम, करंट मिलने में कितना टाइम। जब मुझे कोई बाबा की बच्ची या बच्चा ये सुनाते हैं, बोला मैं जब गई, मैं गया तो बहुत पीछे लंबा मुझे बैठने को मिला, तो बोला हम सोचते थे पता नहीं अब हमारे ऊपर तो कहां बाबा की इतनी दूर नजर पड़ेगी, लेकिन जब मुरली पूरी हो जाती है वही व्यक्तियां इतना खुशी से उछलकर अनुभव सुनाते, कहते आज तो बाबा ने कमाल कर दी। हम हैरान होते कि ये तो कहते थे हमको बाबा की इतने दूर से दृष्टि कैसे मिलेगी, क्या इसको प्राप्त हो गया। बोला ऐसा लगा मैं सामने बैठा हूं बैठी हूं और बाबा जैसे मेरे से ही बात कर रहे हैं, मुझे ही कह रहे हैं, मेरी ही बात बता रहे हैं। और जो किरणें आई, जैसे कोई बहुत टेस्टी मिठाई मन भावन खाते ना तो कैसे निकलता है मुंह से, आज तो मजा आ गया खाने का, इतने खुश हो करके सुनाते हैं, तो ये जादू किसका। अब सोचो, तो हम कुछ क्षण के लिए बाबा के सामने होते हैं, लेकिन कितना आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टता होती है। और हम जैसे ही उतरते वर्णन करते हैं, बाबा ने मुझे देखा, एकदम बाबा का ध्यान गया मेरे पर, और मेरे मन में जो चल रहा था जैसे बाबा मुझे उसका जवाब दे रहे थे। एक क्षण में क्या क्या अनुभव सभी करते हैं, करते हो कि नहीं करते हो? किया है? हाथ उठाइए, देखो हर बच्चा खुश है। वाह मेरे बाबा, वाह मेरे बाबा के बच्चे, वाह आप भाई बहने, और वाह वंडरफुल ड्रामा, और वाह वंडरफुल ड्रामा का ये मधुर आत्मा और परमात्मा का कल्याणकारी मिलन। फिर क्यों नहीं हम मंदिरों में पूजे जाएंगे, क्यों नहीं हमारा गायन शास्त्रों में होगा? क्योंकि हमारे जैसा कोई ने अनुभव किया ही नहीं। हमारे जैसा परम सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया ही नहीं। हम बिना शास्त्र पढ़े, बिना गुरु किए, बिना कोई भक्ति जन्म में किए, कईयों ने किए ये, पर कई तो ऐसे भी थे जिन्होंने कोई भक्ति नहीं की। और बाबा ने क्या किया, अचानक अपना बना लिया और हम गाने लगे, तू मेरा और मैं तेरी, पाना था सो और काम आगे, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। तो बाबा कहते एक काम बाकी रहा, मेरा तो एक शिव बाबा, बोलो आगे, दूसरा ना कोई। तो हम बोलते कितना सरल हैं, खुशी से बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इसी विघ्न को दूसरे हमारी स्मृति में आते हैं, अंत तक हमको सताएंगे यदि हमने उनमें नाम रूप का मोह रखा तो। इसलिए बाबा कहते हैं नष्टो मोह बनो। तो बताओ अब बाबा की ओर पालना क्या चाहिए? कहता है ज्ञान तुमको सुनाता हूँ, राजयोग तुमको सिखाता हूँ, नई दुनिया तुम्हारे लिए स्थापन करता हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को तुम्हारे लिए मैंने पैदा किया, ब्रह्मा के तन में तुम बच्चों के लिए आया, मुरली तुमको सुनाता हूँ, मुरली में बातें तुमसे करता हूँ। जो कुछ भी बाबा करते हैं किसके लिए करते हैं? हम बच्चों के लिए। इसलिए ये संगम युग हमारे लिए पालना का कौन सा उत्सव है? मौज ही मौज, मौजों का उत्सव। सही विधि से आ गया ना चलना, तो कदम कदम पर मौज ही मौज है। तो इसीलिए हम उनकी ये पालना को याद करें। अव्यक्त बाप दादा ने जो पालना दी, जब ज्ञान सुनाया, ज्ञान सुनाने के बाद बच्चों से बैठना मिलना, बातें करना, उनकी समस्याएं, उलझने, परिस्थितियां, परीक्षाएं, विघ्न, उनका जवाब देना, सॉल्यूशन देना, समाधान करना। पता है आपको कितने बज जाते थे? शाम को 6:30-7 बजे से हमारे अव्यक्त बाप दादा का रथ, हमारी प्यारी मीठी गुलजार दादी बैठती थी। कितने बजते थे जिनको याद है वो हाथ उठाएं। पालना लेने वाले सुबह के 5-6 बज जाते थे। सारी रात ये सेवा बाबा की चलती थी बच्चों के साथ। तो जागता कौन है? माँ जागती है, पिता जागता है ज्यादा। बच्चा पैदा करके माँ जागती रहती है। आज भी अमृत वेले बाबा बाहें पसार कर्म बच्चों को बुलाते, हमारा इंतजार करते। तो पालना का अनुभव मालूम पड़ा तो कितना बाबा जागे हम बच्चों के लिए। अच्छा, आप सभी से मिलकर अति हर्ष हो रहा है क्योंकि एक साथ हम अपने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे जोन, सब जोन के अन्य भी भाई बहने सब मिले। आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, आप में हमने बाबा देखा, हम में आपने बाबा को देखा, सुना और हम सब आनंद विभोर हो गए। ठीक है, अच्छा, अभी ओम शांति, फिर मिलेंगे।